प्रभु श्री राम एवं रावण के बीच हुए रामायण के महायुद्ध के विषय में भला किसे नहीं पता। परंतु क्या आप जानते हैं कि अयोध्या और लंका राज्य के बीच में हुआ यह युद्ध पहली बार नहीं था। जी हाँ, लंका पर भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा किए गए आक्रमण से पहले तथा सीता हरण के अनेक वर्ष पूर्व रावण ने भी एक बार अयोध्या राज्य पर आक्रमण किया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रामायण से पहले पॉडकास्ट के 13वें एपिसोड में। पॉडकास्ट की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार रावण ने राजा मरुत के राज्य को लंका के अधीन कर लिया। राजा मरुत का राज्य बिना किसी रक्तपात के जीतने के पश्चात रावण का दंभ और बढ़ गया और उसने समस्त पृथ्वी को अपने अधीन करने की योजना बनाई। क्या हुआ जब रावण ने अयोध्या पर आक्रमण किया और कैसे इस युद्ध ने रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी की, जानेंगे रामायण से पहले पॉडकास्ट की आज की कड़ी में। मैं हूं आपका सूत्रधार गौरव तिवारी और आप सुन रहे हैं रामायण से पहले पॉडकास्ट का 13वां एपिसोड, अयोध्या पर आक्रमण। राजा मरुत के आत्मसमर्पण के बाद रावण ने उनके राज्य उशीर बीज को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके बाद उसकी एक के बाद एक और अधिक राज्य जीतने की इच्छा तीव्र होती गई। रावण के पराक्रम और प्रकोप के सामने किसी की भी नहीं चलती थी और कई राजा तो केवल उसका नाम मात्र सुनकर ही बिना लड़े हथियार डाल दिया करते थे। इस क्रम में रावण ने अनेक राजाओं को बिना युद्ध किए ही परास्त कर उनके राज्यों को लंका साम्राज्य के अधीन कर लिया। अपनी दिग्विजय अभियान के अगले पड़ाव में रावण ने अयोध्या राज्य की ओर रुख किया। अयोध्या में उस समय इक्ष्वाकुवंशी राजा अनरण्य का राज्य था। अनरण्य राजर्षि स्वभाव के एक महान धर्मात्मा एवं प्रजावत्सल राजा थे, जिनके राज्य की सुख समृद्धि की चर्चा चारों ओर थी। इसी धन और ऐश्वर्य को हथियाने की लालच में दशानन ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया। अयोध्या पहुंचकर लंकापति ने महाराज अनरण्य को अपना राज्य उसे सौंप देने के लिए आदेश दिया, लेकिन स्वाभिमानी अनरण्य ने राजा मरुत की तरह आत्मसमर्पण करने की बजाय रावण से युद्ध कर वीरों की तरह मृत्यु को आलिंगन करना ही क्षत्रिय धर्म समझा। थोड़ी देर के बाद रावण की सेना और राजा अनरण्य की सेना रणभूमि में आमने सामने थी। 10,000 हाथी, 1,00,000 घुड़सवार, सैकड़ों रथी और करोड़ों पैदल सैनिकों से सजी अयोध्या की सेना मायावी राक्षसों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह उत्साहित थी। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त दशानन के लिए मनुष्य केवल तिनकों के समान साबित हुए। देखते ही देखते अयोध्या की सेना कुछ ही क्षण में नष्ट हो गई और राजा अनरण्य को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। युद्ध भूमि में अकेले ही जूझ रहे महाराज अनरण्य ने अपने बचाव के लिए रावण के ऊपर 800 बाण मारे, परंतु वह रावण को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने में असमर्थ हुए। अंत में रावण के द्वारा किए गए एक भयंकर प्रहार से अनरण्य गंभीर रूप से घायल होकर अपने रथ से नीचे गिर पड़े। तत्पश्चात धराशायी राजा के सिरहाने खड़े होकर लंकापति जोर जोर से हंसते हुए महाराज अनरण्य एवं इक्ष्वाकुवंश का परिहास करने लगा। अपने अंतिम समय में अयोध्या नरेश ने रावण की उद्दंडता को देख मुस्कुराते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने जो मुझे पराजित किया है यह भी समय का ही किया कराया है। तेरे विनाश की घड़ी निकट आ चुकी है, जिसके कारण काल तेरे सिर पर सवार होकर तुझसे ऐसे अट्टहास करवा रहा है। जा, मेरा शाप है तुझे। जिस गरिमामयी इक्ष्वाकु कुल का तू इस प्रकार अपमान कर रहा है, उसी वंश में भगवान श्रीहरि विष्णु दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और तेरे इस घमंड को चूर चूर करते हुए तेरे प्राणों का हनन कर लेंगे। इतना कहते ही महाराज अनरण्य ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। राजा अनरण्य की मृत्यु के पश्चात रावण किसी और राज्य पर अधिकार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ चला। आकाशमार्ग से जाते समय उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी को दशानन की क्रूरता और अधर्मपूर्ण आचरण के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए उन्होंने रावण का सर्वनाश करने हेतु उसी के अहंकार का उपयोग करने का विचार किया। रावण को उकसाने के लिए नारद जी ने कहा, हे विश्रवानंदन, आप क्यों अपनी शक्तियों का प्रयोग इन तुच्छ मनुष्यों पर कर उसका अनादर कर रही हैं? यह तो वैसे भी आपके समक्ष कीट पतंगों से अधिक कुछ नहीं है। आपसे मृत्यु प्राप्त करने के बाद इनके प्राणों को तो वैसे ही यमपुरी की यातनाएं भोगनी ही हैं।
यमपुरी की यातनाएं?
मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि, रावण ने उत्सुकतावश नारद जी से पूछा। हाँ राक्षस राज, जहां मृत्यु के बाद सभी को जाना पड़ता है, वही यमलोक की बात मैं कर रहा हूँ। आपके अनेक पूर्वज भी वहां अपने कर्मों के फल स्वरूप यमराज के प्रकोप को झेल रहे हैं। यदि आप सच में इतने पराक्रमी हैं दशानंद, तो यमराज को पराजित कर अपने पूर्वजों को यमपुरी की यातना से मुक्ति दिलवाइए। सभी प्राणियों का नाश करने वाली मृत्यु रूपी यमराज के ही प्राण हर लेने से सकल जीवात्माओं पर आपका अधिकार व स्वामित्व सुनिश्चित हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी ने एक कुटिल मुस्कान दी और वहां से चले गए। इधर रावण के हृदय में मृत्यु को पराजित करने की तीव्र इच्छा उफान मारने लगी। उसने सोचा, यदि वह कुबेर का विनाश कर सकता है तो बाकी लोकपालों को भी अवश्य ही पराजित कर सकता है। उसी क्षण उसने यमलोक पर आक्रमण करने का मन बनाया और कुबेर के बाद यमराज, वरुण देव तथा देवराज इंद्र आदि चारों लोकपालों का वध करने की शपथ भी ले ली। रावण के मृत्युलोक पर आक्रमण करने पर क्या हुआ, जानेंगे रामायण से पहले पॉडकास्ट की अगली कड़ी में। सूत्रधार प्रस्तुत इस पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए और हर सप्ताह नए एपिसोड का आनंद लीजिए। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो दूसरों से भी साझा कीजिए। सूत्रधार द्वारा प्रस्तुत अन्य पॉडकास्ट को भी सुनिए और फॉलो कीजिए। सूत्रधार से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमारा हैंडल है माई सूत्रधार, MYSUTRADHAR। आर्थिक रूप से हमारी सहायता करने के लिए आप हमारी वेबसाइट mysutradhar.com पर जाकर भारतीय कहानियों पर आधारित पजल्स और गेम्स भी खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट है MYSUTRADHAR.com। अब मैं आपका सूत्रधार गौरव तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले सप्ताह और जानते हैं रावण और यमराज के बीच हुए युद्ध के बारे में। धन्यवाद।